अयान और ज़ोया दोनों आश्रम के सामने गाड़ी पार्क कर अंदर चले गए। ये वो आश्रम था जिसे अयान को सपनों में बार बार दिखा करता था। ज़ोया ने उत्सुकता से अयान से पूछा, यही है वो जगह? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप इमरान के पीछे चलते हुए कदम बढ़ाए। ज़ोया अयान के मन में चल रही भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। उसे ये नहीं पता था कि अयान के भीतर किस तरह की भावनाओं का तूफान चल रहा है। वे दोनों आश्रम के ऑफिस में पहुंचे। अयान ने वहां के प्रबंधक से कहा, मुझे इस आश्रम को डोनेशन देनी है। उसने ये शब्द सावधानी से कहे क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो सीधे साधे तरीके से अपनी बातें कह देगा तो शायद माहौल ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी वो क्या कहता कि उसे इस आश्रम के सपने आते हैं, अगर कोई उसकी बात सुनेगा तो शायद हंसी उड़ाए। प्रबंधक अयान और ज़ोया को देखकर खुश हुए। अयान ने चेक प्रबंधक को दिया और कहा, देखिए, आपकी और आपके जैसे लोगों की मेहरबानी से ही ये आश्रम चलता है। बहुत से बच्चे हैं जो आपके सहयोग से पढ़ लिख पाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर अयान ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या यहाँ पर अरहान नाम का कोई लड़का हुआ करता था? मैं थोड़े साल पहले की बात पूछ रहा हूँ। प्रबंधक ने शांत और सजीव स्वर में जवाब दिया, देखिए, मुझे यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जहाँ का प्रबंध पहले कौन संभालते थे, शायद वे इसके बारे में जानते होंगे। अयान ने आश्रम में चारों ओर देखा। वातावरण बहुत ही शांत और सुकून देने वाला था। दीवारों पर बच्चों के चित्र लगे थे, खेल का सामान और किताबें अलमारियों में व्यवस्थित थीं। बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त थे, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई खेल में मग्न। हर जगह एक अजीब सी शांति और गरिमा महसूस हो रही थी, जैसे ये स्थान केवल बच्चों की खुशियों और सीखने की जगह नहीं, बल्कि एक उम्मीद और विश्वास का प्रतीक हो। ज़ोया ने धीरे से कहा, यहाँ का माहौल बहुत सुकून देने वाला है। अयान ने सिर हिलाकर सहमति दी, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। यादें, सपने और एक गहरी भावनाएं जो शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। क्या हुआ? कुछ किया? उसे लड़के ने? प्रबंधक को लगा कि उसे लड़के ने कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए वो उसे ढूंढ रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं अनाथ आश्रम पर एक बुक लिख रहा हूँ, अयान ने प्रबंधक से कहा, इसलिए मैंने पूछा था। अयान पुराने प्रबंधक के बारे में पूछने लगा, तो उसने बताया कि पुराना प्रबंधक इसी आश्रम में रहता है। वहाँ पर जो सबसे पीछे साइड में कमरे बने हुए थे, वो उन्हें जाने के लिए कह देता है। वो लोग वहाँ से बाहर आ गए। आप ये क्या पूछ रहे थे, अरहान कौन है? ज़ोया ने कहा, क्योंकि अयान ने उसे पूरी बात नहीं बताई थी कि उसे क्या सपना आता था। अयान को लगा था कि ज़ोया फालतू में फ़िक्र करेगी, वो उसे कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने नहीं बताया। मुझे एक अरहान नाम का लड़का दिखता है सपनों में, अयान ने धीरे धीरे कहा, और वो कहता है कि इस अनाथ आश्रम को बचाना है। ज़ोया उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचती रही। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्की आश्चर्य की झलक थी। आप क्या कह रहे हैं? आपने कोई फिल्म देखी है? उसी का सपना देखा है? अयान की बातें ज़ोया को अजीब लग रही थीं, लेकिन अयान ने बस मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि अगर वो सारी कहानी बताएगा कि सपने उसे कैसे दिखते हैं, तो ज़ोया फालतू में परेशान हो सकती है। वैसे ज़ोया ने कुछ सोचकर जोड़ा, इस नाम का मेरा भी एक कुलीग हुआ करता था जो उसके साथ काम करता था। अयान और ज़ोया दोनों प्रबंधक के पास चले गए। प्रबंधक अनाथ आश्रम के ही एक कमरे में रहते थे। जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि प्रबंधक की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। दोनों ने प्रबंधक से कहा कि कृपया बैठ जाइए। कमरे में सन्नाटा और हल्की चिंता का माहौल था, लेकिन प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए दोनों का स्वागत किया। अयान ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या यहाँ पर कोई अरहान नाम का लड़का रहता था? प्रबंधक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, वैसे तो इस नाम के कई लड़के हैं, लेकिन वो जहाँ का बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। पढ़ाई के बाद उसने स्कॉलरशिप ली और प्रोफेसर बन गया। उसे मैथ से बहुत प्यार था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैथ का प्रोफेसर? ज़ोया ने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, प्रबंधक ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे फोन में उसकी फोटो भी है। उन्होंने अपना फोन उठाया और उसकी तस्वीर दोनों को दिखाई। ज़ोया ने तस्वीर देखकर हैरानी जताई, ये तो मेरा कुलीग था, मेरे ही कॉलेज में मैथ का प्रोफेसर, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। अयान ने धीरे कहा, हाँ, उसी का दिल मुझे मिला है। क्या? ज़ोया की आवाज़ में हल्की आश्चर्य और चिंता दोनों झलक रही थी। हाँ ज़ोया, अयान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जिसका मुझे दिल मिला है उसका नाम अरहान है, और मुझे उसी के अजीब से सपने आते हैं, सपने जो मुझे अनाथ आश्रम तक ले आए। सानवी और आर्यन दोनों सानवी के फ्लैट पहुंच चुके थे। सानवी की मम्मी ने उनके लिए प्यार से खाना बनाया था। जिस तरह से वो आर्यन को बड़े स्नेह और ध्यान से खिला रही थी, उसे देखकर आर्यन मुस्कुराने लगा। देखिए प्लीज आंटी, बहुत हो गया, अब मैं और नहीं खा सकता, आर्यन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। सानवी की मम्मी ने प्यार से जवाब दिया, मैंने कितनी बार कहा है मुझे मम्मी कहो, जैसे सानवी कहती है, मम्मी बुला सकते हो, यही प्यार है जो मैं तुमसे महसूस करती हूँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, आदत नहीं है। वहां पर छोटी छोटी बातें चलती रहीं। आर्यन को सानवी की मम्मी पापा बहुत अच्छे लगे और वो उनके साथ बड़े स्नेह और सम्मान के साथ पेश आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब वे रुक गए तो दोनों वहां से बाहर निकले। गाड़ी में बैठते ही आर्यन ने कहा, आज तो मम्मी ने इतना खिला दिया, सच कहता हूँ। सानवी ने हंसते हुए कहा, तो आपको थोड़ा कम खाना चाहिए था। आर्यन ने प्यार से कहा, खाना इतना टेस्टी बना था। एक बात पक्की है, जो तुम्हारे हाथ में टेस्ट है वो मम्मी के हाथ के खाने से ही आया है। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते और खुश होते हुए छोटी छोटी बातें करने लगे। मुझे रेस्टोरेंट जाना था, सानवी ने कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक राउंड रेस्टोरेंट का ले लें और फिर सीधे घर चलें। एक्चुअली सभी क्या कहेंगे कि हमारी कल शादी हुई है और हम हनीमून पर जाने के बजाय काम पर हैं। हमें जय की कस्टडी लेनी है, सानवी ने हंसते हुए कहा। ठीक है, नहीं चलते। दोनों दोपहर के बाद घर वापस आ गए। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद इनारा थकी हुई बाहर निकली। आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था खाना बनाने का। आज सभी लोग वैसे भी बाहर जाने का प्रोग्राम बना चुके थे, वो भी सभी के साथ बाहर एंजॉय करना चाहती थी। वो खुद से बोली, अगर मैं हर बात में डर कर रहूंगी तो ऐसे कैसे चलेगा। मुझे इसी ऑफिस में काम करना है, मैं इसकी गुलाम नहीं हूँ, मैं इसे मना कर देती हूँ। इनारा जानती थी कि ज्ञान कपूर के लिए खाना तो हर हाल में बनता था, लेकिन आज उसकी हालत वैसी नहीं थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि आज उसे मजबूती दिखानी होगी। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसने फोन निकाला और ज्ञान कपूर को एक मैसेज भेज दिया। मैसेज, प्लीज सर, प्लीज आज मैं अपने सभी ऑफिस कलीग्स के साथ बाहर खाने जा रही हूँ। अगर मैं उन्हें मना करूंगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि मैं उनके साथ क्यों नहीं जा रही हूँ, और फिर हमारे साथ रहने का भेद खल सकता है। इसीलिए आज आप प्लीज खाना बाहर से मंगवा लीजिए। अगर आप चाहें तो मैं लौटते समय कुछ ले आती हूँ, लेकिन आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। मैसेज भेजकर इनारा ने हल्की सी सांस ली। उसके दिल में अब भी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी तसल्ली भी कि उसने पहली बार अपने डर को थोड़ा पीछे छोड़ा था। क्या इनारा आज खाना बनाने से बच जाएगी? अरहान की मौत से कौन सा राज जुड़ा है जो अयान के सपनों में आता है? प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। आपके कमेंट हमें लिखने का हौसला देते हैं।